हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अक्षत को इतने प्यार से सोता हुआ देखकर सोनल परी के होठों पर अपने आप ही एक मुस्कुराहट आ गई थी, और जल्दी ही उसने अपने जादू का प्रयोग करते हुए वो अक्षत को पकड़े पकड़े ही गायब होकर सीधा अक्षत के बेडरूम में पहुंच चुकी थी। और अक्षत को वहां अच्छी तरह से लेटने के बाद, कुछ देर उसे देखने के बाद, सोनल परी वहां से गायब हो गई थी, क्योंकि वो इस तरह से किसी भी इंसान के मोह में नहीं फंस सकती थी, क्योंकि ये परीलोक के सख्त खिलाफ था। अगर तारा परी यहां परीलोक से पृथ्वीलोक पर रह रही थी तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए। तभी सोनल परी जल्दी ही गायब होकर अपने बगीचे में आ गई थी, और आज जो कुछ भी हुआ था, जिस तरह से अक्षत ने उसका हाथ पकड़ा था और उसने उसके बालों में अपने हाथ घुमाए थे, तो उसे काफी अच्छा सा लगने लगा था, और अपने आप ही उसके चेहरे पर भी हल्की हल्की लाली सी आने लगी थी। लेकिन बार बार उसका दिल और दिमाग में भी अलग की तरह की जंग थी। उसका दिल बार बार अक्षत की ओर झुका जा रहा था, लेकिन दिमाग हर बार उसे रोक रहा था। जल्द से जल्द सोनल परी को अपना मकसद पूरा करना था। अमन की मदद कर उसे जल्द से जल्द तारा का पृथ्वीलोक आने का रास्ता साफ करना था। तो उसने अब अक्षत के बारे में सोच सोचकर उसके बारे में सोचने का फैसला कर लिया था। वहीं दूसरी ओर अमन जैसे ही अपने घर पहुंचा, अचानक ही उसे होश आ गया था, और उसे छोटी सी बच्ची के बाद जो कुछ भी हुआ था वो सारी यादें उसकी मिट चुकी थी। अमन काफी ज्यादा हैरान था कि ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, और क्योंकि उसके दिमाग में हल्की हल्की कहीं यादें थी, लेकिन उस वक्त ज्यादा कुछ जानना जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि सोनल परी ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमन को हरिहर याद से आज़ाद कर दिया था। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अमन को जब भी होश आए वो अपने आप को ऐसी हालत में देखे, या फिर ये सोचे कि वो एक दानव का मुकाबला नहीं कर पाया तो ये उसके लिए सही नहीं होता। और अमन को इस वक्त हिम्मत और ताकत दोनों की ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसे आत्मविश्वास की, जो उसे अब हर हाल में रखना था। अमन सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने कल के मिशन की तैयारी करने लगा था। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था, क्योंकि आज जिस तरह से काव्या उसके ऑफिस में आई थी और उसने अमन के केबिन के अंदर झांकने की कोशिश की थी कि आखिरकार अंदर क्या हो रहा है और वो लड़की कौन थी, लेकिन उसे उसका पता नहीं लग पाया था। पहली बार ऐसा था कि ना तो वो किसी लड़की का मन पढ़ पाया था और ना ही उसके बारे में जान पाया था, और कहीं ना कहीं ये बात उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि काली शक्तियों का मालिक अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी न किसी का मन पढ़ लिया करता था, लेकिन उसने जब काव्या का मन पढ़ने की कोशिश की तो उसे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा अंधेरा ही नजर आया था, और कुछ भी उसे समझ में नहीं आया था। काली शक्ति का मालिक अमित को इतना परेशान देखकर मल्लिका उसके पास आई थी और कहने लगी थी, आखिरकार आपको हुआ क्या है मालिक, आपको इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। रही बात उस लड़की के, हो सकता है नॉर्मल, आप जानते हैं कि अमन सर का इंटरव्यू लेने के लिए कितनी ज्यादा भीड़ लगी रहती है, हर कोई मीडिया वाला हर रोज ऑफिस में उनके एक इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह करता रहता है, तो आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। जरूर वो भी किसी ना किसी इंटरव्यू से रिलेटेड ही अमन से मिलने आई होगी, और वैसे भी अगर वो लड़की मुझे दूसरी बार ऑफिस में दिखी तो मैं इस बार उसे अमन से मिलने ही नहीं दूंगी, सीधा उसे वहां से बाहर निकाल फेंकूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अमन किसी से भी मिले। जैसे ही मल्लिका ने ये कहा, तब काली शक्तियों का मालिक अमित मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगा था। उसके करीब जाकर उसने उसके बालों को पकड़कर थोड़ा सा पीछे की ओर खींच लिया था, और उसकी गर्दन अपने आप ही ऊपर हो गई थी, और फिर वो उसके कानों के पास अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहने लगा था, अरे वाह, वाकई तुम्हारे अंदर तो अमन को लेकर इतनी इतनी आग है कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। काश मैं तुम्हारी आग हर रात सही से बुझा पाता, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अमन के साथ ही रिश्ता बनाना है। अगर मेरी शक्तियों का मसाला नहीं होता तो हर रोज मैं तुम्हारे साथ अपनी और तुम्हारी दोनों की मिलकर आग बुझाता। ऐसा कहकर उसने उसके गर्दन को बुरी तरह से चूमना शुरू कर दिया था, और मल्लिका अब मन ही मन में पछताने लगी थी कि उसे इस तरह से काली शक्तियों के मालिक अमित के सामने नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी अमित केवल चूमने तक ही नहीं रुकेगा, वो उसकी हालत जिस्मानी रिश्ता बनाने से भी ज्यादा बदतर कर देगा। वहीं दूसरी ओर तारा बेसब्री से सोनल परी के किसी न किसी सिग्नल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो हर हाल में जल्द से जल्द अमन के पास लौटकर जाना चाहती थी, क्योंकि अमन के बिना रह पाना उसके लिए अब पॉसिबल नहीं था। अभी तारा अमन और पृथ्वीलोक के बारे में सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक घबराई हुई रानी माँ उसके पास आ गई थी। जैसे ही तारा रानी माँ को इस तरह से घबराया हुआ देखा तो वो हैरान हो गई और कहने लगी थी, क्या हुआ है रानी माँ, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं, क्या फिर से दानव ने कोई आक्रमण किया है? जैसे ही तारा ने ये कहा, रानी माँ अचानक से आकर तारा के गले से लग गई थी और उसकी ओर देखकर कहने लगी थी, मेरे बच्चे, आज तुम यकीन नहीं करोगे कि मैंने क्या देखा। जैसे ही रानी माँ ने ये कहा, तारा हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, माँ, आखिरकार बात क्या है और आप कहना क्या चाहती हैं? तभी रानी माँ ने तारा को कहना शुरू कर दिया था, बेटी, जब हर रोज की तरह मैं हर एक कमरे का निरीक्षण कर रही थी और जब मैं उस मूर्छित अवस्था में पड़े राक्षस के कक्ष से बाहर निकली तो अचानक से उसे राक्षस ने मुझे पुकारा था। क्या 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 क्या? जैसे ही तारा परी ने ये सुना, वो हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, रानी माँ, आप क्या कह रही हैं? भला वो राक्षस आपको कैसे पुकार सकता है? वो राक्षस मूर्छित अवस्था में है, वो बोल नहीं सकता है। भले ही एक दिन आप उसे पर काला पत्थर नहीं फेंक पाई थी, जिसकी वजह से उसका एक रूप दानव बनकर पृथ्वीलोक चला गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। वो इस तरह से मूर्छित अवस्था में बोल नहीं सकता है। तारा की बात सुनकर उसकी माँ उसकी ओर देखने लगी थी और बोली थी, बेटी, मैं जो कुछ कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। इतना ही नहीं, उस कमरे में पहरेदारी करने वाले सारे के सारे सहायक काफी ज्यादा डरे हुए हैं। तभी तारा ने रानी माँ से कहा था, अगर ऐसी कुछ बात है तो मैं खुद जाकर उस राक्षस को देखना चाहूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिरकार वो वाकई कुछ बोल रहा है या उसके अंदर किसी तरह की कोई शक्ति आ गई है। जैसे ही तारा परी ने कहा, उसकी माँ थोड़ा सा कांप गई थी और कहने लगी थी, नहीं बेटी, मैं इस तरह से तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अगर तुम वहां गई तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और हो सकता है तुम्हारी खुशबू से उस राक्षस के अंदर मूर्छित अवस्था से बाहर आने की गति ज्यादा तीव्र हो जाए। जैसे ही रानी माँ ने ये कहा, रानी माँ उन्हें कहने लगी थी, रानी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, ये बात और है कि मैं पहले उस राक्षस के नाम से ही डर जाया करती थी, लेकिन अब आपकी बेटी बदल चुकी है। वो पृथ्वीलोक रहकर आई है, उसके अंदर जिन्नातों का वंशज है जो मुझे अपने आप में ही काफी ज्यादा शक्ति और ताकत और हिम्मत देता है।
तो आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। ऐसा कहकर तारा परी उस राक्षस के कक्ष में जाने लगी थी और जैसे ही वो कक्ष के बाहर गई, अचानक से उसका दिल कांप सा गया था, क्योंकि भले ही वो अपने आप को कितना ही हिम्मत वाली दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन उस राक्षस ने जो कुछ उसके साथ किया था, तारा परी वो आज तक नहीं भूल पाई थी। तो इसीलिए तारा ने एक बार फिर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए अपने आप को हिम्मत दी थी और जल्दी ही वो उस कक्ष के अंदर चली गई थी। जैसे ही तारा परी उस कक्ष गई जिस कक्ष में राक्षस मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था, और वहां तारा परी ने देखा कि वो राक्षस पूरे के पूरे फर्श पर चारों तरफ फैला हुआ था। उस राक्षस का कद बहुत ही बड़ा था, क्योंकि जिस वक्त वो मूर्छित अवस्था में कैद हुआ था उस वक्त नॉर्मल इंसान का वेश था, लेकिन योग माया के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने के बाद पूरे 2 वर्षों तक वो पूरी तरह से बेहोश रहने वाला था। वेल, तारा जैसे ही उस राक्षस के कक्ष के अंदर गई तो अचानक से ही तारा के जिस्म की खुशबू उस राक्षस की नाक से जा टकराई थी, और जैसे ही तारा की खुशबू राक्षस के नाक से टकराई और अचानक तभी वो राक्षस बोल उठा था, तारा परी, तुम आ गई। जैसे ही तारा ने उस राक्षस के मुंह से अपना नाम सुना, उसके चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया और उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे, और वो उस राक्षस की ओर देखकर कहने लगी, तुम आखिर बोल कैसे पा रहे हो? ये क्या हो रहा है? तुम नहीं बोल सकते, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब जैसे ही तारा ने ये कहा, अचानक से वो राक्षस जोरों से हंसने लगा था और कहने लगा था, शायद तुमने तुम्हारे कुलगुरु के नियम अच्छी तरह से नहीं सुने थे। तुम अपना मकसद पूरा होने से पहले पृथ्वीलोक से परीलोक नहीं आ सकती थी, लेकिन तुम बीच में आ गई हो जबकि तुम्हारा मकसद पूरा होने में अभी 4 महीने बाकी है, और अगर तुम मेरे करीब रहोगी तो चाहे मैं कितनी ही बुरी अवस्था में क्यों ना रहूं या मेरी जान ही क्यों ना चली गई हो, मैं तब भी तुम्हारे पास लौट कराऊंगा, क्योंकि मैं जन्मों जन्मों का तुम्हारे जिस्म का प्यासा हूं। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूं। जैसे ही उस राक्षस ने ये कहा, तारा पूरी तरह से हैरान हो गई थी और वो कहने लगी थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम इस तरह से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हो, तुम इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकते हो, और याद रखना, इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है जब तक तुम मूर्छित अवस्था से बाहर आओगे तो उसी दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तभी वो राक्षस जोरों से हंसने लगा था और कहने लगा था, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अभी मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी बोलने की शक्ति वापस मिल चुकी है, जिसके द्वारा कम से कम मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुमसे बातें तो कर ही सकता हूँ, उस राक्षस ने बड़ी ही बदतमीजी से कहा था, और तारा उसकी बात सुनकर बिल्कुल पूरी तरह से तप कर रह गई थी। तारा के लिए वहां खड़े रहना पूरी तरह से दुश्वार हो गया था, और जैसे ही वो वहां से जाने लगी अचानक से राक्षस की आवाज़ बड़ी ही बुरी तरह से गूंजने लगी थी। याद रखना तारापरी, ठीक 4 महीने बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। और तुमने जो ये कोशिश की है मुझे मूर्छित अवस्था में भेजकर पृथ्वीलोक जाकर किसी मामूली इंसान या फिर उस जिन महाराज अमन के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाकर तुमने जो गलती की है तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। और याद रखना, जिस दिन मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, उस दिन मैं तुम्हारे उस जिन महाराज का नमोनिशान मिटा दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, तारा का सब्र जवाब दे गया था और अचानक तारा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और उसने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करते हुए उस राक्षस पर वार कर दिया था, जिससे उस राक्षस शरीर में आग जलने लगी थी। लेकिन उस राक्षस का शरीर भले ही आग में जल रहा हो, लेकिन उसके मुंह से दर्द की या किसी तरह की कोई आवाज नहीं थी, बल्कि वो लगातार हंसता रहा था। तब तारा समझ चुकी थी कि ये उसकी छड़ी का जादुई आग उस राक्षस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, तो इसीलिए तारा वहां से चली गई थी। और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक थोड़ा थोड़ा डर अब जगह लेने लगा था कि अगर वो वाकई पृथ्वीलोक नहीं जा पाई तो क्या वो हमेशा हमेशा के लिए अपना वजूद खो बैठेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी उसका बच्चा अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर वो अमन के रक्त अभिषेक के बाद होने वाला था। तारा अब ये सोचकर कांपने लगी थी और तारा ने ये तय किया था कि जब तक वो पृथ्वीलोक नहीं पहुंच जाएगी तब तक वो एक पल के लिए भी अपना ध्यान भंग नहीं होने देगी और अपने कड़े मंत्रों का उच्चारण करके अमन की मदद करने की कोशिश करेगी ताकि अमन जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाए। वहीं दूसरी ओर अमन जल्दी ही अपने घर पहुंच चुका था और जैसे ही वो घर गया तो वो उसे रह रहकर बार बार कुछ ऐसा लग रहा था मानो कि वो कुछ पीछे छोड़कर आ रहा हो। उसे इस बात के बारे में दूर से दूर तक कोई एहसास नहीं था कि अक्षत खुराना के अंदर के दानव की मौत हो चुकी थी और उसे किसी और ने नहीं बल्कि परीलोक से आई सोनल परी ने बचाया था, वो भी तारा परी के मार्गदर्शन पर। क्या वक्त रहते अमन तारा को वापस ला पाएगा? क्या सोनल परी अक्षत से मोहब्बत कर बैठेगी? क्या वो अपना मकसद भूल जाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।